हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 16 श्लोक नंबर 21 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे ताप त्रयोन्विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चतुष कुमार भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वो श्लोक नंबर 21 में कहते हैं, यस्ताम विविक्त चरितैरनुवर्तमानम् नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंग सत्वं द्विजानुपत पुण्य रज पुनीत श्रीवत्स लक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वं। यस्तं विविक्त चरितै अनुवर्त मानं नात्याद्रि यत् परम भागवत प्रसंग सत्वं द्विजानुपत पुण्य रज पुनीत श्रीवत्स लक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वं। यस्तम अर्थात यमन जो तामन लक्ष्मी को विविक्त यानी नितांत शुद्ध चरितैर अनुवर्तमानम चरितै अर्थात भक्ति अनुवर्तमानम यानी सेवा करते हुए नात्याद्रियत अर्थात अनुरक्त परम भागवत प्रसंग। परम मतलब सर्वाधिक भागवत मन भक्तगण प्रसंग यानी अनुरक्त। स त्वं द्विजानुपथ स मन परमेश्वर त्वं मन तुम द्विज यानी ब्राह्मण अनुपथ यानी पथ पर पुण्य पुण्य रज पुनीत पुण्य मना पवित्र की गई रज मना धूल पुनीत मना शुद्ध किया हुआ। श्रीवत्स लक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वं श्रीवत्स लक्ष्म श्रीवत्स अर्थात श्रीवस्त का लक्ष्म यानी चिन्ह किम अर्थात क्या अघा यानी तुमने प्राप्त किया भगभाजनत्वं भगमन सारे ईश्वर्य या सारे सद्गुण भाजन यानी आगा त्वमन तुम। अनुवाद चतुष कुमार भगवान से कहते हैं, प्रभु आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से कभी अनुरक्त नहीं रहते जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव आप उस पथ की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं जिन पर ब्राह्मण चलते हैं, और अपने वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह के द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित या भाग्यशाली बन सकते हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने वैकुंठ लोक में लाखों लक्ष्मियों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, किंतु समस्त ऐश्वर्यों से विरक्त रहने की भावना से वे उनमें से किसी के प्रति भी अनुरक्त नहीं होते। भगवान के छह ऐश्वर्य हैं, असीम संपत्ति, असीम यश, असीम बल, असीम सौंदर्य, असीम ज्ञान तथा असीम त्याग। सारे देवता तथा अन्य जीव लक्ष्मी देवी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं, फिर भी भगवान उन लक्ष्मी जी के प्रति अनुरक्त नहीं रहते, क्योंकि अपनी दिव्य सेवा कराने के लिए वे असंख्य लक्ष्मियों को उत्पन्न कर सकते हैं। कभी कभी लक्ष्मी जी को उन तुलसी दलों से ईर्ष्या होती है जो भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वे दल वहीं पर स्थित रहते हैं और हटते नहीं, जबकि लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पर स्थित रहते हुए भी कभी कभी उन अन्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जाती रहती हैं जो उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी जी को कभी कभी अपने असंख्य भक्तों को तुष्ट करने जाना पड़ता है, किंतु तुलसी दल कभी अपने स्थान को नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान लक्ष्मी जी की सेवा की उपेक्षा तुलसी जी की सेवा को अधिक चाहते हैं। इसलिए जब भगवान ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की अहितु की कृपा से ही लक्ष्मी जी उन्हें नहीं छोड़ती, तो हम यह समझ सकते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान के ऐश्वर्य से आकृष्ट होती हैं, उन पर ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण नहीं। भगवान अपने ऐश्वर्य के लिए किसी की कृपा पर आश्रित नहीं है, सदैव परमात्मा है। भगवान का यह कथन कि उनका ऐश्वर्य ब्राह्मणों तथा वैश्यों के आशीर्वाद के कारण है, अन्य लोगों को यह शिक्षा देने के लिए है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का आदर करें जो भगवान के ही भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अत्यंत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि लक्ष्मी भले ही भगवान के हृदय पर रहती हैं, परंतु वो सदैव अलग अलग भक्तों की प्रार्थना पर उनकी सेवा करने के लिए, उनको वरदान देने के लिए वहां पर उनको जाना पड़ता है। लेकिन वो तुलसी जो चरणों पर रहती है, वो वहीं पर स्थित रहती है। इससे भगवान की कृपा दृष्टि सदैव तुलसी दल पर होती है। इसलिए जो तुलसी स्वीकार करते हैं, जो तुलसी की शरण में आते हैं, वो भगवान के चरणों की भक्ति अवश्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी भगवान के चरणों से लिपटी रहती हैं और हमें भी उन चरणों की ओर आकर्षण प्रदान करने का आशीर्वाद देती हैं। आगे मुनिगण भगवान से कहते हैं, धर्मस्य ते भगवत भगवत त्रियुग त्रिभिस्वय पद्भिश्चराचरमिदं द्विज देवतार्थम् नूनं भृतं तदभिघाति रजतमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुग त्रिभिः च पद्भिः चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम् नूनमृतं तदभिगादिरजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवानिरस्य धर्मस्य ते भगवत स्त्रियुग त्रिभिः स्वय धर्मस्य अर्थात धर्म स्वरूप से तुम ते यानी तुम्हारा भगवत भगवान का त्रियुग यानी तीनों युगों में प्रकट होने वाले आप त्रिभिः स्वय त्रिभिः यानी तीन स्वय मन अपने पद्भिः चराचर चरमिदम पद भी अर्थात पांव द्वारा चराचर यानी चर तथा अचर इदम यानी यह ब्रह्मांड द्विजय दो बार जन्म लेने वाला देवता अर्थात देवता अर्थात ये के लिए नूनम तद अभिकादि रजस्तमश नूनम यानी किंतु ब्रितम यानी सुरक्षित तत् तत्यन वे पांव अभिघाति अर्थात विनष्ट करते हुए रजस्तमश्च रज यानी रजोगुण तम यानी तमोगुण च यानी भी सत्वेन नो वरदया सत्वेन यानी सत्वगुण का नो यानी हमको वरदया यानी सारे आशीर्वाद देते हैं तनुवा निरस्य तनुवा यानी अपने दिव्य रूप द्वारा निरस्य यानी भगाकर अनुवाद चतुष कुमार भगवान से कहते हैं हे प्रभु आप साक्षात धर्म हैं अतः आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं जिसमें चर तथा अचर प्राणी रहते हैं आप शुद्ध सत्व रूप तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं तथा द्विजों के रूप रजो तथा तमो गुणों को भगा दें शिला प्रभुपाद की शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान को त्रियुग सत्य द्वापर तथा त्रेता इन तीनों युगों में प्रकट होने वाला कहा गया है चतुर्थ युग अथवा कलयुग में उनके प्रकट होने का यहाँ उल्लेख नहीं हुआ धर्मस्य ते भगवत त्रियुग त्रिभिः स्वय तो तीन युगों में बोला चतुर्थ युग यानी कलयुग में उनके प्रकट होने का उल्लेख नहीं हुआ वैदिक वाङ्मय में वर्णन है कि कलयुग में छन्न अवतार के रूप में आते हैं किंतु प्रकट अवतार के रूप में नहीं आते किंतु अन्य युगों में भगवान प्रकट अवतार होते हैं इसलिए उन्हें त्रियुग कहकर संबोधित किया गया है श्रीधर स्वामी ने त्रियुग का वर्णन इस प्रकार किया है युग का अर्थ है जोड़ा तथा त्रि का अर्थ है तीन भगवान अपने छह ऐश्वर्यों के द्वारा तीन जोड़ों या ऐश्वर्य के तीन जोड़ों के रूप में प्रकट होते हैं इस तरह उन्हें त्रियुग के रूप में संबोधित किया जा सकता है भगवान धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात रूप हैं। तीन युगों में धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा तीन प्रकार से की आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा की जाती है जिनके नाम हैं तप शौच तथा दया इस तरह से भी भगवान त्रियुग कहलाते हैं त्रियुग में आध्यात्मिक संस्कृति के ये तीन आवश्यक अनिवार्यताएं अनुपस्थित सी रहती हैं किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि कलयुग के इन तीनों आध्यात्मिक गुणों से रहित होने पर भी वे आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में छन्न अवतार के तौर पर इस युग के लोगों की रक्षा करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार कहलाते हैं यद्यपि वे स्वयं कृष्ण हैं किंतु वे कृष्ण के भक्त के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं साक्षात कृष्ण रूप में नहीं इसलिए भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे इस युग की सर्वाधिक प्रमुख संपत्तियों रजो तथा तमो गुणों को दूर कर दें। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित भगवान के नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का कीर्तन करके रजो तथा तमो गुणों को अपने से दूर कर सकता है। शारुख कुमार रजो तथा तमो गुणों में अपनी स्थिति से ज्ञात थे क्योंकि वैकुंठ में होते हुए भी उन्होंने भगवान के भक्तों को श्राप देना चाहा, चूंकि उन्हें अपनी दुर्बलता का भान था, अतः उन्होंने अपने में शेष रजो तथा तमो गुणों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। तीन दिव्य गुण शौच तप तथा दया द्विजों तथा देवताओं के गुण हैं, जो सत्वगुण में स्थित नहीं है। वे आध्यात्मिक संस्कृति के इन तीनों सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए तीन पाप कर्म हैं, जिनकी मनाही की जाती है। वे हैं अवैध यौन, मादक द्रव्य सेवन तथा कृष्ण को अर्पित प्रसाद के अतिरिक्त अन्य भोजन खाना। ये तीनों निषेध तपस्या शौच तथा दया के सिद्धांतों पर आधारित है। भक्तगण दयालु होते हैं क्योंकि वे दीन पशुओं को नहीं मारते तथा स्वच्छ रहते हैं क्योंकि वे अवांछित खाद्य पदार्थों तथा अवांछित आदतों के कलमश से मुक्त रहते हैं। तपस्या का प्रतिनिधित्व नियंत्रित यौन जीवन द्वारा किया जाता है। शारुख कुमार की प्रार्थनाओं द्वारा इंगित किए गए इन सिद्धांतों का पालन उन भक्तों द्वारा किया जाना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर चतुष कुमार ने भगवान से कहा, धर्मस्यते भगवते त्रियुग त्रिभिस्व। आप तीनों युगों के धर्म की स्थापना करते हैं, आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं। तो भगवान अलग अलग युगों में आते हैं और कलयुग में क्योंकि वो छन्ना अवतार में होते हैं, इसलिए यहाँ पर तीन युगों के बारे में बताया गया है। और भगवान सत्वगुण में शुद्ध सत्व में रहते हैं और सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण जो हैं उनके कारण जो हमको भगवान से दूर करते हैं, भगवान उन समस्त कारणों को दूर करने वाले हैं, उन समस्त गुणों को माया को दूर कर देते हैं, भगा देते हैं जो हमें भगवान से दूर करने वाली है। लेकिन उसके लिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। जो सिद्धांत यहाँ पर बताए गए हैं, तपः शौचम तथा दया। तपस्या क्या है? अपने शरीर मन वाणी उसकी तपस्या जो है उसका प्रतिनिधित्व नियंत्रित यौन जीवन द्वारा किया जाता है। हमारे शब्दों से किसी को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। हम अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ रखें, वो है स्वच्छ श्वेत तपः शौचम। वो पवित्र शरीर जो है और पवित्र मन और पवित्र हृदय से ही भगवान की भक्ति की जा सकती है। इसे हमें सदैव पवित्र विचार रखने चाहिए, अपने मन में पवित्र बुद्धि से डिसीजन लेना चाहिए और शरीर को भी पवित्र रखना चाहिए और उसके साथ साथ अन्य जीवों मनुष्यों ही नहीं पशुओं पर भी दया करनी चाहिए, जिससे हम कृष्ण भावनामृत भावित होकर भगवान को प्राप्त कर सकें। आगे ऋषिगण कहते हैं, चतुष कुमार भगवान से कहते हैं, हे प्रभु आप ही तो हैं जो समस्त द्विजों के उच्च रक्षक हैं। आप जब कोई आपकी पूजा करता है तो आप पवित्र और बहुत ही मृदु वचनों से हम सबकी रक्षा करते हैं और निश्चित ही आपकी पूजा करके जीव आनंदित होते हैं आपके शब्दों के द्वारा, आपके आशीर्वाद के द्वारा। और यदि पूजा करने के बाद आप यदि इस तरह से
जी को आनंदित ना करें तो फिर भला कोई आपकी पूजा क्यों करे। भक्त तो जो भी कार्य करता है आपके बल, आपके प्रभुत्व के बल पर ही कार्य करता है और समस्त कर्मों के फल भी आपको समर्पित कर देता है। भक्त को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास होता है, इसीलिए आप हमेशा अपने भक्तों को आशीर्वाद और प्रेम प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, न त्वं द्विजोत्तम कुलम यदि हात्म गोपम गोप्ता वृष स्वरहणेन ससूनृतेन हर्येव नक्षति शिव स्तव देव पंथा लोको ग्रहीष्य दृषभ स्यरि तत्प्रमाणम् न त्वं द्विजोत्तम कुलम यदि हात्म गोपम गोप्ता वृष स्वर हरणेन ससूनृतेन तर्ह्येव नक्षति शिवस्तव देवथा पंथा लोको ग्रहीष्य दृषभ स्यहि तत्प्रणाम प्रमाणम। अर्थात न त्वम न मना नहीं त्वम मना तुम द्विजोत्तम कुलम द्विज यानी दो बार जन्म लेने वाले उत्तम कुलम यानी सर्वोच्च जाति यदि आत्मगोपम यदि मना यदि ही मना निसंदेह आत्मगोपम अर्थात आपके द्वारा रक्षित होने के योग्य गोप्ता यानी रक्षक गोप्ता वृष स्वहरणेन वृष अर्थात सर्वोत्कृष्ट स्वहरणेन अर्थात पूजा द्वारा ससुनृतेन मृदु शब्दों के साथ साथ तरही यानी तब एव यानी निश्चय ही नंक्ष्यति अर्थात खो जाएगा शिव यानी शुभ तव यानी तुम्हारे देव पंथा हे प्रभु पथ लोको ग्रहीष्य दृषभस्य लोको यानी सामान्य जन ग्रहीष्यत अर्थात स्वीकार करेगा ऋषभस्य सर्वोत्कृष्ट का ही क्योंकि ही तत् प्रमाणम तत् मनवः प्रमाणम मतलब प्रमाण। अनुवाद, हे प्रभु आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं, यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा ना करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि महापुरुषों के कार्यों तथा चरित्र का अनुसरण सामान्य जनों द्वारा किया जाता है। भगवान कहते हैं याचरति श्रेष्ठ तत्तरेवो तरोजना के जो महापुरुष होते हैं सामान्य जन उनको ही फॉलो करते हैं। इसलिए समाज में आदर्श चरित्र वाले नायकों की आवश्यकता पड़ती है। कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत में पूर्ण प्रभुत्व का दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए ही प्रकट हुए हैं और लोगों को उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है। वैदिक आदेश है कि मनुष्य मात्र मानसिक चिंतन या तर्क द्वारा परब्रह्म को नहीं समझ सकता, उसे महापुरुषों का अनुसरण करना होता है। महाजनों ये नगता सपंथा यानी कि हम चाहे कितने ही बुद्धिमान हो जाएं, कितने ही एजुकेटेड हो जाएं, हम अपनी मर्जी से परब्रह्म को नहीं समझ सकते। इसलिए महाजनों ये नगता सपंथा यानी महापुरुषों ने जो बताया है उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, महापुरुषों का अनुसरण किया जाना चाहिए। अन्यथा यदि हम शास्त्रों पर ही अवलंबित रहें
तो कभी कभी हम दूरतों द्वारा गुमराह किए जा सकते हैं या फिर हम विभिन्न आध्यात्मिक आदेशों को समझ नहीं पाते अथवा उनका अनुसरण नहीं कर पाते। अगर कोई बोले कि भाई नहीं, मैं किसी को फॉलो क्यों करूं, मैं खुद ही शास्त्र पढ़ूंगा और खुद ही समझूंगा कि परब्रह्म क्या है, उसी तरह से अपनी मर्जी से भक्ति करूंगा, गुरु करने की जरूरत नहीं है, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे शास्त्र हैं और शास्त्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की बातें लिखी गई हैं, तो वो गुमराह हो जाएंगे और सही मार्ग को नहीं चुन सकेंगे। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। आगे बताया जाता है, सर्वोत्तम मार्ग यही है कि महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। चारों ब्राह्मण मुनियों ने कहा कि कृष्ण स्वभावतः गौओं तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं, गौ ब्राह्मण हिताय च। जब कृष्ण इस लोक में थे तो उन्होंने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया था। वे ग्वाल बाल थे और ब्राह्मणों तथा भक्तों का अत्यधिक आदर करते थे। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि हुई है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ द्विज हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों ही द्विज हैं, किंतु इनमें से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो हर व्यक्ति अपने शरीर के ऊपरी भाग, सिर, बाहें तथा उदर की रक्षा करता है। इसी तरह मानव सभ्यता की असली प्रगति में सामाजिक शरीर के सर्वोत्तम भाग यथा ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के को विशेष सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु उच्च जातियों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। मनुष्यों के सारे वर्गों में ब्राह्मणों तथा वैश्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनकी पूजा की जानी चाहिए। जब उनकी रक्षा की जाती है तो यह ईश्वर के पूजन जैसा होता है। यह यथार्थ सुरक्षा नहीं है, यह कर्तव्य है। अभी देखो, अगर युद्ध हो रहा हो और आपको सामने वाला काटने आ रहा है, मतलब मारने आ रहा है, आपकी टांग कट जाएगी आप बच जाओगे, आपके हाथ कट जाएंगे आप बच जाओगे, लेकिन गर्दन कट जाएगी तो बचोगे क्या? नहीं। तो इसीलिए ब्राह्मण जो है वो समाज का सर है, मस्तक है, इसलिए उनकी सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। तो ये कर्तव्य है। मनुष्यों को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैश्यों को सभी प्रकार से संपत्ति तथा मृदु वचन अर्पित करके उनकी पूजा करें। यदि किसी के पास कुछ भी अर्पित करने के लिए कोई साधन नहीं है तो उन्हें शांत करने के लिए कम से कम मधुर वचनों का प्रयोग तो अवश्य करना चाहिए। भगवान के ने स्वयं कुमारों के प्रति ऐसा आचरण प्रदर्शित किया। अभी देखो, हमें ब्राह्मणों को धन देना चाहिए, संपत्ति देनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को शिक्षा दें। यदि वो बेचारे अपने आर्थिक समस्याओं से उलझ रहे होंगे, कमाई के लिए किस तरह से घर को चलाना है, तो फिर भला वो कैसे है ना शिक्षा देंगे। इसलिए अगर और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनको अच्छे शब्दों से उनका ना सत्कार करना चाहिए, जैसा कि भगवान अभी कुमारों के साथ कर रहे थे। तो चतुष कुमार ने भगवान का बहुत ना आदर किया। उसके बाद श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि नेतृत्व करने वाले इस प्रणाली का सूत्रपात नहीं करते तो मानव सभ्यता विनष्ट हो जाएगी। जब कभी भगवान के भक्तों के लिए जो आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बुद्धिमान है, कोई सुरक्षा तथा विशिष्ट व्यवहार नहीं होता, तब सारा समाज विनष्ट हो जाता है। नंक्षंती शब्द सूचित करता है कि ऐसी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उसका संहार हो जाता है। जहाँ पर वैष्णवों और ब्राह्मणों का आदर नहीं होता है, वो सभ्यता नष्ट हो जाती है। इसलिए आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि और उसका संहार हो जाता है। जिस प्रकार की सभ्यता संस्तुति की गई है वह देव पथ कहलाती है, जिसका अर्थ है देवताओं का राजमार्ग। देवताओं से उपेक्षा की जाती है कि भक्ति में अथवा कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हों। यही शुभ मार्ग है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि समाज के महापुरुषों या नेता ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सम्मान प्रदान नहीं करते और उन्हें केवल मधुर वाणी ही नहीं अपितु सारी सुविधाएं नहीं देते, तो मानव सभ्यता की प्रगति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। भगवान स्वयं ही इसकी शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कुमारों की इतनी प्रशंसा की। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से हमें गौओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों का सम्मान, आदर, मृदु वचनों के साथ उनका स्वागत, जैसा कि भगवान ने स्वयं इस श्लोक में, इस अध्याय में अपने आचरण से बताया कि ब्राह्मणों और वैष्णवों का किस तरह से सत्कार होना चाहिए, किस तरह से उनसे प्रेम से बात करनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।